कृष्ण। तो आज हमारे यात्रा का आखिरी दिन है और जब भी हम ऐसे हमारे जीवन के दिन जहां हम नित्य कथा, नित्य कीर्तन, नित्य सेवा में लगे रहते हैं, तो जब वो आखिरी दिन आता है तब एक अंदाज़ा हमें मिलता है कि भगवान से और भगवान के इस पूरी भगवत प्राप्ति की जो जीवन शैली है उससे थोड़ा सा दूर होने से हमें जो विप्रलंब का भाव, उसका अनुभव होता होगा जो चैतन्य महाप्रभु देने आए। हालांकि वो तो बहुत ऊंचा भाव है और बहुत गहरा, बहुत मात्रा में है, परंतु यदि उसका कण मात्र भी, लेश मात्र भी उसका हम अनुभव कर पाए, उस विप्रलंब भाव का, तो कम से कम उसके सहारे पूरे जीवन भर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों को हो रहा है थोड़ा सा वो विप्रलंब भाव कि फिर से राम काज को छोड़कर काम काज में जाना होगा। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ उसके पश्चात भगवान ने राम काज करने के लिए सारे वानर सेना को फिर से किष्किंधा जाने के लिए कहा। केवल हनुमान जी को भगवान पीछे रोक लिए, क्योंकि हनुमान जी अकेले ब्रह्मचारी थे और बाकी सारी वानर सेना, उनका पूरा गृहस्थ जीवन किष्किंधा में सेट था। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी हैं हमारी यात्रा में, वो लोग, हम लोग रुक सकते हैं और हमारा तो एक बैग होता है, कहीं पर भी चले जाएं, वहीं सेटल हो सकते हैं। तो जैसे प्रभु श्री राम ने सारे वानरों को बोला कि आपको जाकर किष्किंधा में राम काज करना है, तो उनके मन में प्रश्न था कि अब किष्किंधा में तो काम काज होता है, क्योंकि वहां पर तो हमें हमारी गृहस्थी चलानी है, तो राम काज कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि मुझसे मिलने से पहले जो कुछ आप लोग किष्किंधा में करते थे वो काम काज था, परंतु अब मुझसे मिलने के पश्चात और मुझे जानने के पश्चात और मेरी सेवा करने के पश्चात अब जो कुछ तुम जाकर करोगे, चाहे वो किष्किंधा हो, चाहे वो नासिक हो, जो भी कुछ आप करोगे वो राम काज होगा। तो ये भगवान ने वानर सेना को आदेश भी दिया और उसके साथ साथ आश्वासन भी दिया। तो ये मत समझिएगा कि ये आखिरी दिन, बस अब इसके पश्चात हमें हमारे रोजमर्रा के कामकाज में लगना है, नहीं। प्रभु श्री राम भगवान के ये जो अवतार हैं, कृष्ण, राम इत्यादि, वो ऐसे हैं कि वो चुंबक के समान हैं। आप थोड़ा सा निकट जाओ, हम लोग सब वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं और भगवान ये महाचुंबक हैं। तो हम थोड़ा सा निकट जाते हैं तो चुंबक, उसका गुण क्या है कि वो खींच लेता है। और कई बार जब लोहे के टुकड़े, वो आयन फाइलिंग्स जिसको बोलते हैं, कि उनकी मात्रा कम होती है या उनका साइज कम होता है, और जितने समय वो चुंबक से लगे रहें तो धीरे धीरे वो चुंबकीय गुण उसमें भी आ जाता है। तो जितना हम इस चुंबक के निकट रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो चुंबकीय गुण आएगा और फिर हम अपने आप, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे चुंबक बन रहे हैं और हमसे कैसे दूसरे लोहे के टुकड़े चिपक रहे हैं। इसे कहते हैं परंपरा, परंतु हमें चुंबक के निकट रहना है। उदाहरण याद है नेवले का, मंगूस और सांप। तो हाँ, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत से ऐसे परिस्थितियाँ आपको झेलनी पड़ेंगी जाकर फिर से, जहाँ पर ऐसे ऐसे जहरीले तत्वों से डील करना पड़ेगा, परंतु नेवले के तरह सत्संग को, उस जड़ी बूटी को निकट रखिए। तो हम आते हैं जो प्रसंग हमने लिया यहां, भरत अब प्रभु श्री राम से मिले और मिलने के पश्चात अब लक्ष्मण वो निकट खड़े देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण अपने आप को एक गुनहगार समझ रहे हैं। जो प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की उसके पश्चात वो अपने आप को एक गुनहगार समझ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो खड़े हैं। प्रभु श्री राम बीच बीच में लक्ष्मण की ओर भी देख रहे थे कि तुम क्या समझे थे भरत को और देखो भरत क्या है। तो भरत अचानक वो जिस वॉल्यूम में बात करने लगे भगवान श्री राम से, सारे अयोध्या वासी वो कभी भरत को इस वॉल्यूम में सुने नहीं थे। तो भरत मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहां से एक कदम मैं आगे आपको जाने नहीं दूंगा, अधिकार से, हक से। वो छोटे भाई हैं और दासत्व का भाव है, परंतु यहां पर चित्रकूट में उनका जो भाव था वो अधिकार का था, और वो कहे कि यहां से एक कदम भी मैं जाने नहीं दूंगा आपको कहीं, और सीधे अयोध्या लौटना है आपको। और किसी को यदि वनवास में जाना ही है तो मैं जाऊंगा। यदि ये लिखा गया है कि रघुकुल में दशरथ नंदन मैं भी हूं, भरत कहते हैं मैं भी दशरथ नंदन हूं, और यदि यह विधि का विधान है कि रघुकुल में दशरथ नंदन को 14 वर्ष का वनवास मिलना ही है, वो अनिवार्य है, तो मैं स्वीकार करता हूं। यह दशरथ नंदन भरत स्वीकार करता है वनवास को। तो प्रभु श्री राम भरत से कहते हैं कि विधि का विधान सुनना चाहते हो तुम, मैं सुनाता हूं विधि का विधान। यह ऐसी बात है जो तुम्हारी मां कैकेयी भी नहीं जानती थी। कौन सी बात? कि जब हमारे पिता दशरथ का विवाह माता कैकेयी से होने वाला था, तो माता कैकेयी के पिता अश्वपति, उन्होंने एक प्रण लिया था, एक वचन मुझसे लिया था, दशरथ महाराज से लिया था। रामचंद्र जी भरत को कह रहे हैं, अश्वपति ने महाराज दशरथ से ये प्रण लिया था, वचन लिया था, क्योंकि महाराज दशरथ चाहते थे कैकेयी को। वो गए थे कैकेयी को पूछते हुए कि मुझे इनसे विवाह करना है, क्योंकि कैकेयी ने जो सेवा अर्पित की थी और कैकेयी जो दिखने में इतनी सुंदर थी इत्यादि, वो सब कुछ कारणों के वजह से। तो अश्वपति, उन्होंने कहा कि भाई कौशल्या तो वो सबसे वरिष्ठ पत्नी है आपकी, तो ये तो स्वाभाविक है कि कौशल्या का जो पुत्र होगा वो सबसे ज्येष्ठ अग्रज होगा और वही राजगद्दी संभालेगा आगे चलकर तुम्हारे बाद। तो मैं एक ही शर्त पर मेरी बेटी कैकेयी दूंगा, उसका हाथ दूंगा, यदि ये वचन तुम मुझे दो कि आगे चलकर अयोध्या के राज सिंहासन पर कैकेयी का पुत्र वो राजा बनेगा। ये दशरथ ने वचन कैकेयी के पिता अश्वपति को उनके विवाह से पहले दिया था, और ये बात कैकेयी को भी पता नहीं थी। उन्होंने ये बात कैकेयी को भी नहीं बताई थी। मान लीजिए अगर कैकेयी को ये बात भी पता होती, पहले से ही दो वचन इतने खतरनाक थे, ऊपर से अगर ये बात कैकेयी को पता होती तो महाराज दशरथ का क्या हाल होता। इसलिए उन्होंने ये बात कैकेयी को नहीं बताई थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि प्रभु श्री राम को इस बात का पता था, तो जब राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो रामचंद्र जी स्वीकार कैसे किए? उसी समय बोल देते कि अरे आपने तो वचन दिया है अश्वपति को कि राजा भरत हो गए। प्रभु श्री राम को भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था उस समय जब घोषणा दशरथ महाराज ने की राम को राजा बनाने की, उस समय राम उनको भी नहीं पता था। तो कब पता चला? किसे पता था? सुमंथरा को। और सुमंथरा इतने विश्वसनीय, वो न केवल वो सारथी थे दशरथ के, न केवल वो ऐसे मुख्यमंत्री थे, बल्कि सबसे गोपनीय बात महाराज दशरथ के जीवन की और पूरे रघुकुल की यदि पूरे अयोध्या में कोई जानता था तो वो सुमंथरा थे, इसलिए वो जानते थे। तो जब सुमंथरा राम सीता लक्ष्मण को छोड़े अयोध्या की सीमा पर, तो जाते जाते उन्होंने ये बात रामचंद्र जी को बताई कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि ये बात दशरथ ने अश्वपति कैकेयी के पिता को वचन दिया था और ये विधि का विधान उस प्रकार से लिखा गया, तो ऐसे ये सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए ये बात भगवान श्री राम अब भरत को सुना रहे हैं कि तुम विधि के विधान की बात कर रहे हो, ये है विधि का विधान। परंतु भरत फिर भी नहीं माने, वो बोले कि यदि मैं दशरथ महाराज ने वो वचन दिया, अश्वपति को वो वचन दिया होगा महाराज दशरथ ने, परंतु मैंने भी जो वचन लिया है कि मैं नित्य काल तक आपको अयोध्यापति के रूप में सेवा आपकी करूंगा, तो मेरे वचन का क्या? तो जब भरत वो इतने प्रामाणिकता से वो उनके सारे जो मुद्दे थे, उनके सारे जो पॉइंट्स थे, उनको ले जाने के लिए वो प्रस्तुत करने लगे, तो एक समय आया जब अब यहां पर ये जो नवा लेसन है वो है कि ऐसे दो भाई जो लड़ रहे हैं, यहां चित्रकूट में राम और भरत उनकी लड़ाई हो रही थी, परंतु ये कौन सी लड़ाई थी? एक दूसरे को अयोध्या का राज्य देने पे की लड़ाई। कभी आपने ऐसी लड़ाई देखी है भाइयों के बीच में? कलयुग में भाइयों के बीच की लड़ाई क्या होती है? मेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा, ये सब की लड़ाई होती है। यहां पर भरत अयोध्या का पूरा राज्य रामचंद्र जी को देना चाहते हैं और राम अयोध्या का पूरा राज्य भरत को देना चाहते हैं, ये लड़ाई चल रही है। तो प्रश्न है कि इस लड़ाई में जीता कौन? तो राम ने भरत से कहा, ठीक है भरत, मैं हार गया, मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार करता हूं। जैसे ही भगवान ने कह दिया मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार करता हूं, पूरे अयोध्या वासी लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बोल रहे हैं? भरत तो वो भाव विभोर हो गए, जय हो करते भाव विभोर हो गए। भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या का राज स्वीकार करता हूं और इसलिए राजा होने के नाते, मैं ये आदेश देता हूं कि आने वाले 14 वर्ष उस राजगद्दी को तुम संभालो। भगवान ने चेकमेट कर दिया, भरत को चेकमेट किया। तो अब भरत इसे कैसे समझे? वो कुछ कह नहीं पाए। तो अब हमारे जो टीकाकार हैं, वैष्णव टीकाकार, वो कहते हैं कि ये जो राम और भरत के बीच में वाद विवाद जिसको बोलते हैं या फिर वाक युद्ध जो हुआ, उसमें जीता कौन? क्या भरत जीते या राम जीते? हाँ? राम को तो वनवास जाना ही था, उन्होंने ये न के न प्रकारेण वो करवा लिया। भरत, उनको प्रभु श्री राम को राजगद्दी पर बिठाना था, उन्होंने भी वो करा लिया। कैसे? तो वो कहे कि मैं तो उस राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं हूं। तो पादुका, आपकी पादुका वहां पर बैठेगी, आप नहीं आ सकते, आपकी पादुका वहां पर बैठेगी। इसलिए ये जो दसवीं शिक्षा है कि भरत को जो प्राप्त हुआ वो राम के किसी भक्त को 14 वर्ष तक कंटिन्यूसली प्राप्त नहीं हुआ है, वो है भगवान के चरण कमल उस पादुका के रूप में। तो राम भी जीते और भरत भी जीते, ये दोनों जीते, परंतु भरत का गुणगान ज्यादा हुआ है, इसलिए कहा गया है कि असली जीत भरत की हुई, क्योंकि भरत को जो प्राप्त हुआ भगवान के पादुकाएं, चरण कमल पादुका के रूप में प्राप्त हुए। रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य, उनके जीवन की एक कथा है कि वो एक बार रंगनाथ जी का दर्शन करने गए, और रंगनाथ जी जो इतने विशाल उनका विग्रह है, आप लोगों ने रंगनाथ का दर्शन किया है? कितनों ने नहीं किया है? तो यात्रा निकालना अनिवार्य है। बाय द वे, हमारी अगली यात्रा का भी अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। ये यात्रा तो पूरी कर ले। तो यमुनाचार्य रंगनाथ जी का दर्शन, वो इतने विशाल उनका विग्रह है और वो लेटे हुए हैं, इतने लंबे चौड़े भगवान हैं कि आप एक दृष्टि में उनका पूरे विग्रह का दर्शन नहीं कर सकते। यदि आप उनके मुखमंडल को देख रहे हो तो आप उनके चरणों को नहीं देख सकते एक ही ग्लांस में। आप उनके चरणों को देख रहे हो तो मुखमंडल को नहीं देख सकते। तो यमुनाचार्य वो जब भी रंगनाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो वो केवल चरणों के पास जाकर बैठते थे, और वो रंगनाथ जी के मुख का दर्शन कभी किया ही नहीं उन्होंने, वो केवल चरणों के पास ही बैठे रहते थे। तो एक बार उनके शिष्य वहां के पुजारी वो यमुनाचार्य को बोले कि आप रंगनाथ जी के मुखमंडल का भी दर्शन कीजिए, इतने सुंदर वो दिखते हैं, कभी आपने देखा ही नहीं वो कितने सुंदर दिखते हैं, आप हर समय चरणों पर रहते हैं। तो यमुनाचार्य बोले कि वो जो सिरहाना है, रंगनाथ जी का जो सिरहाना है, वो दुर्योधन का स्थान है। महाभारत की कथा हम जानते हैं, दुर्योधन वहां पहुंचा था सबसे पहले, कि वो दुर्योधन का स्थान है, इसलिए वैष्णव होने के नाते हमारा स्थान कहां होना चाहिए? चरण कमलों पर। तो भगवान के चरण कमलों की जो महिमा है, जैसे अहिल्या उद्धार में भगवान ने अपने चरणों की महिमा दिखाई, केवल स्पर्श किया उस पत्थर को, और जो सदियों से वो अहिल्या पत्थर के रूप में थी वो पुनः, और अहिल्या के रूप में नहीं, भगवान श्री राम की अनन्या भक्त के रूप में अब वो आई। इसलिए वो जो सुंदर पद है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो केवट, क्योंकि ये बात फैल चुकी थी कि भगवान के चरण कमल इतने शक्तिशाली हैं कि एक पत्थर को छू दिए और वो पत्थर नारी में परिणित हो गया। तो भगवान जब गंगा के तट पर आए तीनों, राम लक्ष्मण सीता, और सूरदास जी ने इस सुंदर पद में जो गुणगान किया है रामचंद्र जी का और केवट के इस प्रसंग का, जिसके अंदर केवट मना कर रहा है कि नहीं भाई आपको मैं नहीं, बाकियों किसी को भी मैं ले जाऊंगा, आपको नहीं ले जाऊंगा। तो रामचंद्र जी अचरज कर रहे हैं कि ये तो मेरा भक्त लगता है और मना कर रहा है। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें उस तट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, केवट ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अभी समाचार मिला है आपके ये जो चरण कमल हैं ये बहुत खतरनाक है, चरण धूल की माया भारी, ऐसी भारी माया है आपके चरण धूल की कि अभी अभी पता चला कि आपने एक पत्थर को नारी में परिणित कर दिया तो नाव का क्या होगा, दोनों चरण कमल आप रख दोगे कितने समय तक, क्योंकि पार करने में टाइम लगेगा, आपके दोनों चरण कमल रहेंगे, पहले से मेरी एक नारी है बहुत भारी है वो भी, तो ऑलरेडी एक पत्नी को मैं संभाल रहा हूं, एक और को कैसे संभालूंगा, और पता नहीं दो दो पैर लगेंगे तो दो ना आ जाए। चरण धूल की माया भारी, उस प्रकार से केवट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर यहां परेशान, अब पार कैसे किया जाए। तो लक्ष्मण राम एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि भाई ये तो लेने के देने पड़ रहे हैं कि साधारण से चरण कमल होते तो पार कर लेते, अब ऐसे चरण कमल लेकर, लक्ष्मण कह रहे हैं आप ऐसे चरण कमल लेकर घूमोगे तो यही होगा। तो फिर केवट ने कहा नहीं, मेरे पास एक युक्ति है। देखो प्रॉब्लम आपके चरण कमल में नहीं है, प्रॉब्लम उस पे जो रेणु है, चरण रेणु, वो खतरनाक है आपकी। तो ऐसा करते हैं, बहुत चतुर थे ये केवट, तो ऐसा करते हैं कि ये चरण कमल आपके मेरे नाव में आए उससे पहले सारे जितने वो कण है, चरण रेणु इनके कण है, वो निकाल लो, मैं वो तो मैं ही करूंगा, चेक करूंगा कि एक भी नहीं होने चाहिए। तो वो इतना चतुर केवट की अपने गोद में भगवान के चरण कमल लगता है, भगवान भी समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सीता मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं कि इसने अपने चतुराई से रघुराई को बांध लिया। हाँ, और फिर धोने लगे, सारा अब चरणामृत मिल रहा है, चरण रेणु, चरण का स्पर्श, सब कुछ मिल रहा है, और वो पूरा चरणामृत अपने परिवार वालों को बांटा, किसी को और नहीं दिया, यहां तक कि सीता मैया को भी नहीं दिया, क्योंकि ये केवट अपने पिछले जन्म में वैकुंठ का एक कछुआ था, और एक बार भगवान अनंत शेष पर लेटे हुए उनके चरण बाहर निकले हुए थे तो ये कछुआ छूने जा रहा था तो लक्ष्मी देवी ने दूर भगाए, ए क्या कर रहे हो, कौन हो तुम। तो उस समय ये कछुआ से लगा कि मुझे भगवान के चरण कमलों की कृपा से वंचित रख रहे हो, मैं इनके अवतार में केवट के रूप में आऊंगा और मैं अपने हाथ से इनका जो चरण धोवन है मैं पीऊंगा, अपने परिवार वालों को पिलाऊंगा और लक्ष्मी तुम्हें नहीं दूंगा। तो यहां पर जब पूरा वो चरण धो दिए और पूरा साफ कर दिया, अब केवट्टी कहा हाँ अब सेफ है, अब आप बैठ सकते हैं, तो बिठा दिया। और फिर इस पद में आगे गाया गया है, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको अब तू मोहे पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, पार उतारने के पश्चात अब प्रभु नाव की उतराई किराया देने लगे। केवट ने कहा नहीं रघुराई, और बहुत सुंदर ये पद उन्होंने कहा गाया कि जैसे मैंने आपको ये गंगा पार कराई, अब किराया मैं यही मांगता हूं हे रघुराई कि आप मुझे इस भव सागर से पार कराइए। तो ये भगवान के चरण कमलों की महिमा, और ये पादुका प्राप्त हुई भरत को 14 वर्ष। तो जो शक्ति अन्यथा भरत जी नहीं पाते थे, जो उनका प्रेम प्रभु श्री राम से उस विरह में वो जी नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान ने अपने स्वयं की पादुका भरत को दी, बस वही सहारा था भरत के लिए। और आश्वासन प्रभु श्री राम का कि मैं 14 वर्ष के पश्चात अवश्य लौटूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो हम देखते हैं कि ये जो 10 शिक्षाएं, भरत का चित्रकूट आना, और यहां से जो कोई जीव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है भगवान के चरण और उनमें स्थान, वो भरत ने प्राप्त किया। महाराज कुलशेखर वो एक उदाहरण देते हैं भगवान के चरण कमलों के संदर्भ में कि कल्पना कीजिए एक जहाज है पानी का, समंदर में है, वो समंदर के बीचों बीच ये जहाज है, और इस जहाज पर एक खंबा है, इस जहाज के अंत में एक खंबा है, और उस खंबे के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। तो उस पक्षी की तुलना महाराज कुलशेखर हमसे करते हैं, बद्धजीव से करते हैं, और ये जहाज की तुलना, ये समंदर की तुलना भवसागर से करते हैं, उस जहाज की तुलना भगवान के विग्रह से करते हैं, और उस खंबे की तुलना भगवान के चरण कमलों से करते हैं। तो कई बार वो कहते हैं, ऐसा देखा जाता है कि ये पक्षी इस जहाज पर वो जो खंबा गड़ा हुआ है उसके ऊपर बैठा बैठा सोचता है कि कहीं मैं इस समंदर में उड़कर घूमकर थोड़ा देख कर आऊं, घूमने जाऊं इस समंदर में। तो वो पक्षी जब उस खंबे को छोड़ता है और उड़ता है समंदर में, तो कितना उड़ पाएगा ये पक्षी, इतना विशाल समंदर है और ये पक्षी इतना सा है, कितना उड़ पाएगा ये। तो जब उड़ते उड़ते थक जाता है तब किसकी याद आती है इस पक्षी को, उस जहाज पर गड़े खंबे की याद आती है, और फिर लौटना पड़ता है उसे। उसी प्रकार से हम बद्ध जीव भगवान के चरण कमल छोड़कर इस भौतिक संसार में इतनी योनियों में जाकर घूम के परखना चाहते हैं कि कहां पर मुझे सुकून इंद्रिय भोग शांति मिलेगी, और जब नहीं मिलती त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब फिर भगवान के चरण कमल याद आते हैं। उसी पक्षी के समान असहाय अवस्था में हम पुनः उस जहाज पर वो गड़े खंबे की ओर जाते हैं, वही एकमात्र सहारा, उसके अलावा और कोई सहारा नहीं है इस समंदर को पार करने का उस पक्षी के लिए। ये सुंदर उदाहरण महाराज कुलशेखर देते हैं भगवान के चरण कमलों के संदर्भ में। तो चित्रकूट धाम में आइए हम भी भरत की तरह भगवान के चरण कमल उनके पादुका को हमारे साथ लेकर चले। ये हमारे चित्रकूट आने का उद्देश्य और सिद्धि हमें वो प्राप्त होगी। अब यहां हमने जो अयोध्या से लेकर चित्रकूट रामकथा सुनी सुनाई, रामायण से इतने अलग अलग जो उत्प्रेक्षाएं हमारे आचार्यों ने रामायण के इन प्रसंगों को दी है, तो वो कहते हैं कि सीता और राम इनका मिलना, क्योंकि रामायण का जो मुख्य प्लॉट क्या है, ये दो प्लॉट है, सीता और राम का मिलना, सीता और राम का बिछड़ना, यह है रामायण। और सब कुछ बाकी सारे जो पात्र हैं वो रामायण के इस मुख्य प्लॉट के लिए सहायक हैं, जिसे कहते हैं सीता कल्याण। अब देखिए, विश्वामित्र मुनि जब वो दशरथ महाराज के पास पहुंचे, और उस समय युवावस्था में ही थे रामचंद्र जी को मांगने के लिए आए, तो महाराज दशरथ से यह सहन नहीं हुआ कि अभी अभी तो इतने वर्षों पश्चात मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है और मैं ठीक से इनका आनंद भी नहीं लुटा पाया कि इन्हें जाना पड़ रहा है, और वो भी राक्षसों का संहार करने के लिए। ये सुकुमार मेरा राम क्या ये कर पाएगा? और जब विश्वामित्र मुनि मांगने आए हैं तो दशरथ, अब देखो बहुत ही उनकी विकट परिस्थिति है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उसमें रामचंद्र जी को वो राजीव लोचन बोलते हैं, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि आप बहुत सीरियस टॉक कर रहे हो, वो भी विश्वामित्र मुनि के साथ, वो कोई साधारण मुनि नहीं है, उनका इतिहास हमने सुना है, आप लोग जानते हैं ना विश्वामित्र मुनि का इतिहास, तो विश्वामित्र मुनि के साथ जो सीरियस टॉक चल रहा है उसमें राम के आंखों की सुंदरता क्यों उसका बखान किया जा रहा है? तो दशरथ महाराज कहते हैं कि ये राजीव लोचन है क्योंकि इनकी आंखें उस कमल के समान है, उस राजीव के समान है कि जो सुबह के समय उगता है, सूर्योदय जब होता है तो ऐसे कमल हैं, कई कमल हैं जो चंद्रोदय के समय उगते हैं या खिलते हैं, और कई कमल जो हैं वो सूर्योदय के समय खिलते हैं। तो भगवान का एक नाम है राजीव लोचन। दशरथ विश्वामित्र मुनि को कह रहे हैं कि ये तो राजीव लोचन है। तो आचार्य इस पर टीका करते हैं, वो विश्वामित्र मुनि को ये बता रहे हैं कि आप जिन राक्षसों का संहार कराने के लिए राम को ले जाना चाहते हो, तो ये सारे राक्षस तो रात्रि में, निशाचर लोग हैं, ये निशाचर प्राणी हैं, ये तो रात्रि में सारी अपने शक्ति के साथ इनकी इनका दिन शुरू होता है, परंतु ये मेरा राम ये तो उस समय सो जाता है, इनकी इसकी जो राजीव लोचन है वो बंद हो जाते हैं और ये केवल सूर्योदय के समय इसकी आंखें खुलती हैं, तो कहां ये काम आएगा तुम्हारे? तो वो सारा संवाद अलग है, उसमें बहुत कुछ हुआ। विश्वामित्र मुनि वो एक व्यंग, एक ताना मारते हुए दशरथ महाराज को कहते हैं, ठीक है आप रघुकुल के हैं, मुझे नहीं लगता था कि आप प्रामाणिक रूप से रघुकुल के हैं, ये दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपने वचन दिया मुकर रहे हो आपके वचन से, फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप जियो, चिरंजीवी हो। इसमें ताना था, इसमें ताना ये था कि आप ज्यादा जीने नहीं वाले हो। तो वशिष्ठ समझ गए, तो वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि ये जो मांग रहे हैं, और वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि आप जानते हैं कि उन दोनों के बीच का इतिहास क्या रहा। तो वशिष्ठ वो दशरथ से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि विश्वामित्र मुनि उन राक्षसों का संहार नहीं कर सकते? खुद कर सकते हैं, वो रामचंद्र जी को ले जा रहे हैं, इनका यश बढ़ाने के लिए, राम का यश बढ़ाने के लिए, यश लाभम उसके लिए ले जा रहे हैं। तो उस समय दशरथ मुनि समझ नहीं, दशरथ महाराज समझ नहीं सके। तो यहां पर हमारे जो वैष्णव टीकाकार हैं वो बताते हैं कि जो विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, इन दोनों के बीच में जो होड़ लगी रहती थी ये अब तक खत्म नहीं हुई थी। कैसे? क्योंकि जब नामकरण हुआ रामचंद्र जी का, तो ये राम नाम राम को दिया किसने? वशिष्ठ मुनि ने। उन्होंने ये नाम दिया था राम। और विश्वामित्र मुनि को जब पता चला, वो हर समय खोज खबर रखते थे वशिष्ठ क्या कर रहे हैं। तो जब विश्वामित्र मुनि को पता चला कि वशिष्ठ इन्होंने नामकरण और वो भी इनको नाम राम दिया है, तो वो पहुंच गए। क्योंकि उनको हर समय एक कदम आगे कुछ करना था वशिष्ठ से, तो पहुंच गए। और वो ये सिद्ध करने के लिए कि आपने वशिष्ठ इनको नाम राम दिया होगा, मैं एक और नाम ऐड करूंगा, ये अभी तक राम के नाम से बुलाए जाएंगे, परंतु मैं जब अब इनको ले जाऊंगा और फिर जब ये वापस अयोध्या लौटेंगे, तो उसके पश्चात केवल राम के नाम से प्रसिद्ध नहीं होंगे, उसके बाद सीता नाम मैं ऐड करने वाला हूं। तो वहां पर भी उनकी स्पर्धा खत्म नहीं हुई, विश्वामित्र मुनि की और वशिष्ठ की। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट यही था दशरथ और विश्वामित्र मुनि में कि ये ताटका मारीच सुबाहु इनको परास्त करने के बाद रामचंद्र जी वापस उधर तक ही कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन विश्वामित्र मुनि वहां से मिथिला ले गए, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था वो पॉइंट। एक्स्ट्रा विश्वामित्र मुनि ले गए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि को ये ताटका मारीच सुबाहु ये सब तो एक्सक्यूज था, ये सब बहाना था। मेन उनको रामचंद्र जी को क्यों वहां से ले जाना था? क्योंकि सीता के साथ मिलाना था मिथिला में, शिव धनुष तोड़वाना था। तो इसलिए देखिए, एक तरफ हैं आप देखो रुक्मिणी कल्याण, रुक्मिणी कल्याण में शिशुपाल हैं, जो शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, रुक्मिणी को द्वारकाधीश कृष्ण से अलग करना चाहता था। और यहां रावण वो शक्ति को शक्तिमान से अलग करना चाहता था, शिशुपाल भी वही करना चाहता था, शक्ति को शक्तिमान से अलग करना चाहता था। तो एक तरफ शिशुपाल और रावण है और दूसरी तरफ विश्वामित्र मुनि और हनुमान जी हैं, जो कि शक्ति को शक्तिमान से मिलाए। हनुमान जी ने भी वही किया और विश्वामित्र मुनि भी वही किए। इसलिए रामायण में ये दो हैं पात्र, विश्वामित्र मुनि और हनुमान जी, जिनको सुंदर बताया गया है। असली सुंदरता क्या है? जब शक्ति को शक्तिमान से जो मिलाता है वो वास्तविक रूप में सुंदर बनता है। इसलिए इनका नाम पहले गदीपुत्र कौशिक था, परंतु जब इन्होंने सीता और राम को मिलाया, सीता कल्याण करवाया, उसके पश्चात ये विश्व के मित्र बने और तब इन्हें विश्वामित्र ये पदवी इन्हें प्राप्त हुई। तो अब ये जो महत्व हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे लिए साधक होने के नाते केवल राम नहीं, सीता और राम ये दोनों, इनका जो समंजस्य है, इनका समन्वय, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीता मैया जो हैं वो कृपा की प्रतिनिधित्व करती हैं, वो कृपा के प्रतीक हैं, और रामचंद्र जी हमारे जीवन में वो न्याय के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे जीवन में दोनों चाहिए, कृपा और न्याय, न्याय अर्थात सही पथ पर चलना, जस्टिस, मर्सी एंड जस्टिस, ये है सीता राम। तो यदि केवल कृपा है और न्याय नहीं है तो व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो जाता है, वो केवल मिठाई खाने के समान है, केवल कृपा 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 कृपा। इसलिए कई बार होता है कृपा दीजिए कृपा दीजिए कृपा, उसके साथ साथ जस्टिस के लिए भी तैयार रहिए। सीताराम का कॉम्बिनेशन ये है, इफ देयर इज ओनली कृपा यू विल बिकम इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार हो जाओगे, और केवल न्याय 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 बिना कृपा के तो वो क्रूरता है, वो अमानुषता है। केवल न्याय केवल न्याय। इसलिए सीता राम का जो कॉम्बिनेशन है, इसलिए सीता कल्याण इतना महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र जी वो अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे थे जब तक वो मिथिला नहीं पहुंचे, और जब विश्वामित्र मुनि मिथिला ले गए राम और लक्ष्मण को और शिव धनुष के विषय में बताया, और शिव धनुष बहुत ही प्रसिद्ध और खतरनाक धनुष था ये शिव जी का, दक्ष यज्ञ में दक्ष यज्ञ से इसका इतिहास बताया, और रामचंद्र जी बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं मानो कि उन्हें पता नहीं है। तो दक्ष यज्ञ में शिव जी जब क्रोधित हुए तो उन्होंने ये शिव धनुष उनका लेकर पूरे सृष्टि को खत्म करने के लिए उन्होंने उठा लिया था, और फिर उनको जब शांत किया गया, देवलोक देवता सब आए और उनको शांत किया गया, तो तब से ये फिर शिव धनुष उनसे लेकर जनक महाराज को दे दिया था कि आप संभालो इसे। तो जनक महाराज के पास ये शिव धनुष पड़ा हुआ था कि जिसका आह्वान किया गया था प्रलय के लिए, तो इसके अंदर वो वाइब्रेशंस थे प्रलय के वाइब्रेशंस, इसलिए इसको तोड़ना जरूरी था, और इसको एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है जो शिवजी से ऊपर है, और वो है भगवान विष्णु स्वयं। तो देवतागण वो भी प्रतीक्षा में थे कि कब ये शिव धनुष टूटे। तो रामचंद्र जी क्षत्रिय, उन्होंने ये सारी विद्या हासिल की थी, जब उन्हें शिव धनुष के विषय में पता चला तो उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि कम से कम मैं देखूं तो, जैसे होता ना कोई अगर क्रिकेट प्लेयर है तो उसको अगर सचिन तेंदुलकर का बैट दिखाने कोई लाए तो कितनी जिज्ञासा होगी कि हाँ भाई सचिन तेंदुलकर का बैट। तो वैसे ही रामचंद्र जी इतना सुने थे शिव धनुष के विषय में तो देखना चाह रहे थे, तो पूछे। अब गुरु जी हैं विश्वामित्र मुनि तो हर चीज के लिए आज्ञा लेनी है, तो गुरु जी से पूछे कि क्या मैं देख सकता हूँ। हाँ हाँ भाई बहुत कुछ करना है तुम्हें, देखना ही नहीं है, जाओ जाओ देखो। तो फिर जब पहली दफा सभा में, जनक महाराज की सभा में राम और लक्ष्मण आते हैं, प्रवेश करते हैं, और जनक महाराज जब रामचंद्र जी को देखते हैं तो पहला विचार जो महाराज जनक के जहन में आता है, वो अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैंने क्यों ये ऐसी शर्त रखी कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और तोड़ेगा वही मेरी बेटी सीता के साथ विवाह करेगा। अरे ये राम, ये ऐसा पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर इतना सुकुमार सुकुमल, अरे यदि मैंने ये शर्त नहीं रखी होती तो अभी मैं सीता का हाथ इस व्यक्ति को दे देता, क्यों मैंने ये शर्त रखी। ये पहला विचार महाराज जनक राम को देखते हुए, और फिर वहां पर जब उन्होंने शिव धनुष देखा तो फिर अपने गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, क्या मैं छू सकता हूं। हाँ हाँ जरूर जरूर, सब लोग वहां पर हाँ छुइए छुइए, बहुत लोग इसे छुए हैं, केवल छुए ही हैं, आगे कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि रामायण में वर्णन है कि इस शिव धनुष को हिलाने के लिए, केवल कुछ इंच हिलाने के लिए 5000 मुष्टंडे लगते थे। मुष्टंडे अर्थात जो पहलवान, कुश्ती करने वाले पहलवान, 5000 लगते थे, और वो एक इंच हिलाने के पश्चात उनको 8 दिन तक आराम चाहिए होता था। इतना भारी था ये शिव धनुष। तो ऐसे शिव धनुष को स्पर्श करने के लिए आज्ञा मांगी रामचंद्र जी ने, आज्ञा तो उन्हें मिली, तो उन्होंने स्पर्श किया और अपने बाएं हाथ से ऐसे उसे उठा लिया, जैसे ही उठाया सब की आंखें खुली की खुली रह गई कि जैसे कोई छोटा सा बालक किसी चटाई के सींक को उठा लेता है। ऐसे उन्होंने शिव धनुष को उठा लिया और पूछा कि क्या मैं प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूं। अब उठा ही लिया है तो वहां पर तो भैया बैंड बाजों की तैयारी शुरू करो, शादी तो इन्हीं से होनी है सीता की। अब रामचंद्र जी को ये कुछ पता नहीं कि ये सारी शर्त रखी हुई है, ऐसा स्वयंवर उन्हें कुछ पता नहीं। वो तो केवल उनके गुरुजी शिव धनुष दिखाने लाए तो उन्होंने स्पर्श किया, देख लिया, उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी। और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको दबाना पड़ा तो उन्होंने जब उस धनुष को दबाया तो टूट गया वो पूरा धनुष और ऐसी आवाज हुई कि पूरी विश्व में, पूरी सृष्टि में उसकी डंकार पहुंची और गोमंतक में परशुराम जी वो अपनी समाधि से बाहर आए। इसलिए यहां पर देखिए परशुराम जी क्रोधित क्यों हुए, बिना सीता के राम परशुराम है, कृपा नहीं है, काली संहार ये है खाली। और जैसे ही उन राम के साथ सीता आ जाती हैं तो बन जाते हैं सीता राम, नहीं तो परशुराम। तो अब यहां पर भगवान की शक्ति से ये सारे लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि, दशरथ इत्यादि उनके उनके कानों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी के सारे कान फट गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सुन्न हो गए कान, ऐसी आवाज। और तुरंत सीता तो रेडी थी वरमाला लेकर, तो सीता वरमाला लेकर आ रही है। रामचंद्र जी देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, हाँ भाई मैंने इसके लिए तो साइन अप नहीं किया था, ये क्या चल रहा है। तो जब उन्हें बताया गया कि भाई ये शर्त थी कि जो इस धनुष को उठाएगा और तोड़ देगा वही सीता का पति होगा, तो अब ये सिद्ध हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है विवाह। अब यहां समझने योग्य बात है कि भगवान ये सिखा रहे हैं कि ये विवाह का जो संस्कार है ये कितना सेक्रेड है, ये कॉलेज के कट्टे पर नहीं डिसाइड होते हैं। और ये ऑनलाइन नहीं होता है, आजकल जो ऑनलाइन चलता है ना कि ऑनलाइन भी हो गया, भाई मैंने तुझको चुन लिया, तूने मुझे चुन लिया ऑनलाइन, शादी.com और ये अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं। भगवान बता रहे हैं, भगवान ने कहा नहीं उधर ही रुक जाओ, ऐसे थोड़ी होती है शादी। सबसे पहले मेरे पिता, पिता का परमिशन लिया है कि नहीं। आजकल तो क्या है, सब कुछ हो गया उसके बाद में पिताजी को इन्फॉर्म करते हैं, डैडी नामकरण के लिए आ जाना बच्चे के, कम से कम इतना तो एहसान किया। तो यहां उन्होंने कहा महाराज दशरथ मेरे पिता उनसे अनुमति लिए कि नहीं? नहीं, नहीं। तो महाराज जनक ने जब यह सुना तो उनके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स थी, वो थोड़े डर भी गए और प्रसन्न भी हो रहे थे। तो डर इसलिए गए कि अरे इतने वर्षों बाद एक मिला है मेरी बेटी के लिए जिसने ये शर्त पूरी करी है, अब मतलब वो हाथी निकल गया, वो पूंछ अटक रही है, ये क्या बोल रहे हैं कि अभी नहीं, पहले दशरथ से परमिशन लो, मेरे पिताजी से परमिशन लो, उनकी स्वीकृति, उनका आशीर्वाद, सब कुछ होगा तब जाकर। और प्रसन्न इसलिए हो रहे थे कि क्या चरित्र है इस व्यक्ति का, कि ऐसी मेरी बेटी सीता जिसके पीछे लोग तरस रहे हैं विवाह करने के लिए और सामने सुंदरता देख रहा है ये व्यक्ति मेरी बेटी की, और मुझे जानता है, पूरा ऐश्वर्य जानता है हम सब का, जानने के बाद भी ये फिसल नहीं रहा है। तो सेल्फ कंट्रोल देखकर जनक महाराज बहुत प्रसन्न, अब तो इसी के साथ शादी कर ली। और तुरंत जब महाराज दशरथ को यह समाचार मिला तो दशरथ दौड़े दौड़े आए मिथिला, दशरथ दौड़े दौड़े आए। और फिर उनकी जो मीटिंग हुई, अभी देखिए विवाह का अर्थ है दो संस्कृतियों का मिलना, इसे कहते हैं विवाह। तो यहां पर दो संस्कृतियां मिल रही हैं, रघुकुल और विदेह की संस्कृति। तो यहां पर दशरथ वो अपने खानदान के विषय में बताने लगे कि कौन से खानदान से हैं वो, इक्ष्वाकु, अंशुमान, दिलीप, सगर महाराज, ऐसे खानदान से ये है राम। और फिर महाराज जनक वो कोई कम नहीं थे, उन्होंने निमि महाराज का उदाहरण दिया कि निमि महाराज वो इतने बड़े राजा राजऋषि हुए कि एक बार वशिष्ठ मुनि के साथ, वो भागवत में एक कथा नवम स्कंद में है, वो अलग वशिष्ठ हैं जिनके साथ ये हुआ था। तो महाराज निमि ने अपना देह त्याग कर दिया और जब सारे देवता आए उनको वापस देह देने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने अपना देह त्याग कर दिया है, अब पुनः मुझे कोई देह नहीं चाहिए। इसलिए उनको एक नाम मिला विदेह। और इसलिए उस परंपरा में माता सीता का एक नाम है वैदेही, बहुत नाम है अलग अलग सीता के, उसमें से एक नाम है वैदेही। तो जो निमि महाराज, उन्होंने अपना देह त्याग किया और पुनः उन्हें देह में नहीं आना था, तो उनके शरीर से जो मंथन हुआ उनसे पैदा हुए जनक। तो ये जनक पोस्ट है। और सीता के जो पिता, उनका नाम था श्री ध्वज जनक। और फिर एक और सीता कल्याण में जानने लायक बात है कि महाराज दशरथ जब बात पक्की की इनके विवाह की, तो महाराज दशरथ ने अपनी हथेली जनक महाराज के नीचे रखी। अब ये बेटे के पिता हैं, तो महाराज जनक पूछने लगे, तो आप तो ऊंचे हुए हमसे, आप हथेली को नीचे क्यों रख रहे हो? तो देखिए महाराज दशरथ क्या कहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि जब कोई भीख मांगता है तो भिखारी का हाथ नीचे होना चाहिए, जो भिक्षा उसको मिल रही है उसे नीचे होना चाहिए। तो आप पिता हैं, कन्या के पिता हैं, और कन्या का जो पिता होता है वो क्या करता है, कन्या दान। हम सुनते हैं ना कन्या दान के विषय में। तो आप सीता के पिता हो, कन्या के पिता हो, कन्या दान आप कर रहे हो, और मैं उस दान को स्वीकार कर रहा हूं, मतलब मैं भिखारी हुआ। तो जो बड़ा होता है वही तो दान देता है छोटे को, तो मैं आपसे छोटा हुआ क्योंकि मैं दान स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए मेरा हाथ आपके हाथ के नीचे होना चाहिए। इसे कहते हैं संस्कृति। तो ये राम सीता का मिलन विश्वामित्र मुनि जो कराए और विश्व के मित्र बने। तो क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यदि राम की कृपा प्राप्त करनी है तो बिना सीता के नहीं प्राप्त कर सकते। अब यहां पर आप देखो रामायण में अगर आप गौर करोगे, जहां पर सीता राम के साथ थी एक भी असुर मारा नहीं गया, जैसे कि काकासुर, हमने उसकी चर्चा की जयंत। सीता मैया थी, भगवान मारना चाहते थे, सीता ने रोक दिया, नहीं अपराध इसने किया है लेकिन इसके प्राण मत लो। सूर्पणखा, सूर्पणखा के भी प्राण चले जाते, परंतु सीता वहां पर मौजूद थी इसलिए भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि केवल नाक और कान काटो। खरदूषण उनका वध हुआ क्योंकि उस समय सीता नहीं थी। यहां तक कि अशोक वाटिका में जब रावण का वध हो गया, उसके पश्चात हनुमान जी सीता को जब लेने आए, बताने आए, तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप अभी मुझे अनुमति दो, ये सारे जो यहां पर अशोक वाटिका में ये सारे राक्षसियां राक्षस जो नियुक्त किए गए थे परेशान तुम्हें करने के लिए, तो आज्ञा दो इन्हें सब खत्म मैं करता हूं। उन्हें भी सीता मैया कहती हैं कि ये केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, इन्हें मुझसे कोई पर्सनल बैर नहीं था, ये केवल रावण की ड्यूटी निभा रहे थे। इसलिए उस समय पहली दफा सीता ने डांटा हनुमान जी को और कहा कि बंदर की तरह व्यवहार मत करो, डांट फटकार लगाई। तो मुद्दा यह है कि राम की कृपा सीता के साथ है, इसलिए सीता राम हमारे लिए, सीता और राम जब तक ये न जुड़ें, तो इसलिए हम लोग यहां पर चित्रकूट धाम में, जहां पर हालांकि नासिक में सीता और राम अलग हुए, और ये जो ग्रंथकार हैं उनके लिए ये सबसे करुणामय प्रसंग है जब सीता और राम अलग हुए, परंतु एक बद्ध जीव का उद्धार और एक बद्ध जीव की वास्तविक खुशी किसमें है? सीता और राम के एक साथ आने में। अंत में, जैसे कल हमने एक लोक कथा आपको सुनाई थी, तो एक और बहुत सुंदर लोक कथा है एक ऐसे अनन्य भक्त की, क्योंकि रामचंद्र जी ने जब भी कृपा दी जिस किसी को भी, चाहे वो जटायु हो, शबरी हो इत्यादि, उनकी सरलता को देखते हुए दी। तो हम यदि यहां से राम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं जाते जाते, तो हमारे अंदर कौन सा गुण हमें लाना होगा? सरलता का गुण। और ये घटना है एक ऐसे व्यक्ति की, एक गांव में ये रहा करता था, और ये कोई ऐसे भगवान वगैरह इत्यादि में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था, ऐसा नहीं था कि नास्तिक था, परंतु ये खवैया था, इतना खाता कि सुबह शाम दिन भर इसको केवल खाना चाहिए, इसलिए इसका नाम उस गांव में खवैया। इसके परिवार वाले परेशान थे इससे, कुछ काम नहीं करता, केवल खाता। तो घर से बाहर निकाल दिया इसे, नहीं संभाला जाता है तुमको, अब जाओ निकल जाओ यहां से। तो अब ये अकेला, इसको समस्या ये हुई कि जो इतना मुझे 4 बार 5 बार मिलता था, अब कहां से मिलेगा। तो घूमते भूखा प्यासा उसने देखा एक साधु महात्मा, उनका आश्रम, और साधु महात्मा बाहर खड़े बड़े तंदुरुस्त लग रहे थे, होते हैं साधु महात्मा आश्रम वाले, तंदुरुस्त होते हैं बहुत। तो इसने, इसका नाम क्या था? खवैया। तो खवैये ने जब ये आश्रम के गुरुजी को देखा तो समझ गया कि ये आश्रम के गुरुजी जो हैं, आश्रम में बड़ा अच्छा कुछ भंडारा वगैरह मिलता होगा तब जाके तो ये तंदुरुस्त हैं। और फिर इसने देखा कि गुरुजी के शिष्य इत्यादि वहां पर उनकी सेवा के लिए जब बाहर आए तो वो भी अट्ठे कट्टे तंदुरुस्त, वो ज्यादा थे गुरुजी से तंदुरुस्त। तो इसने कहा ये गुरुजी जो हैं ये मेरी समस्या का समाधान बन सकते हैं। तो गुरुजी के पास ये खवैया जाता है और कहता है कि देखो भाई, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप जिस तरीके से आपकी तंदुरुस्ती बनाए रखे हैं, मैं जानता हूं इसके पीछे अच्छा भोजन वदी यहां पर मिलता होगा इस आश्रम में, तो वो मुझे आप दे दीजिए, बाकी आप जो कहें मैं कर लूं। तो गुरुजी तुरंत पहचान गए कि ये ईमानदार व्यक्ति लगता है, बहुत सरल लगता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम रहो यहां पर। उन्होंने कहा लेकिन खाना मुझे पूरा मेरे अनुसार मिलना चाहिए, भरपेट, मैं तो 4 बार 5 बार खाता हूं। तो गुरुजी ने कहा यहां पर तो 2 बार ही मिलता है भाई, सुबह शाम। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी एक्स्ट्रा सेवा कर दूंगा, मुझे 4-5 बार चाहिए खाने के। तो गुरुजी कहे ठीक है भाई, तेरे लिए एक्स्ट्रा हम 4-5 बार अरेंज कर देंगे। तो ऐसे दिन बीतते गए इसके, तो और इसकी तंदुरुस्ती बढ़ गई। गुरुजी ने देखा सेवा भी कर रहा है, लेकिन ये जब टाइम आता है इसका खाने पीने का, तो उस समय एक फोकस्ड, एकाग्रचित होता है, कोई गुरुजी नहीं, कोई बाकी साधु संत नहीं, फोकस्ड रहता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी समस्या इस आश्रम में भी हुई। और क्या समस्या हुई, इस दिन ये सुबह उठा, इसने देखा कि कोई कुछ पका नहीं रहा है, कोई कुछ बना नहीं रहा है, प्रसादम हॉल खाली, किचन में कोई आवाज नहीं आ रही है। वो था एकादशी का दिन। तो ये जाके गुरुजी से पूछे कि गुरुजी आज बात क्या है, कुछ कोई खा नहीं रहा है, कोई कुछ खिला नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा, अरे मैं बताना भूल गया, आज तो कुछ नहीं बनने वाला है, आज तो तुम्हारी विकट समस्या है तुम्हारी, आज तो एकादशी है। तो पूछा, एकादशी क्या होता है, इसे भी नहीं पता था एकादशी क्या। तो उसने कहा, एकादशी में कुछ नहीं खाते भाई, यहां पर तो निर्जला होते हैं, निराहार होते हैं। अरे तो ये एकादशी कब तक चलती है, पूरे 24 घंटे चलेगी, बाद में द्वादशी में मिलेगा। अरे बाप रे, 24 घंटे कुछ नहीं मिलेगा, तब तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, तब तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, वो समस्या तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आश्रम का नियम है। तो इसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपको आश्रम का नियम मेरे लिए तोड़ना होगा। तो गुरुजी हंसने लगे कि ये व्यक्ति कितना फोकस्ड है, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, कोई भी दिन हो। तो गुरुजी ने कहा, देखो भाई, हमारा कोई शिष्य बनाएगा नहीं, कुछ पकाएगा नहीं, तुम्हें अगर पकाना है तुम्हारे खुद के लिए तो तुम पका लो, किचन है, सारा सामग्री है, वहां पर जाओ। तो ये मरता क्या ना करता गया, ठीक है मैं ही पका लूंगा, ज्यादा कुछ आता नहीं था पकाना वकाना। तो अब इसने एकादशी के आइटम्स तो वहां पर कुछ थे नहीं बनाने के लिए, तो आटा दाल सब्जियां वगैरह ये सब बनाने लगा कि मुझे तो भाई कोई एकादशी वगैरह पालन नहीं करनी। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है तुम ये सब बना भी रहे हो, लेकिन एक शर्त मेरी माननी होगी, मैंने तुम्हें इतनी छूट दे दी है, मेरी शर्त यह है कि जो भी कुछ तुम पकाओ रघुनाथ जी को ऑफर करना। ये कौन है रघुनाथ जी? रघुनाथ जी राम। तो राम को ही भोग चढ़ाना है, उसी के बाद तुमको जो भी कुछ खाना है खाओ। तो इसने कहा, ठीक है। तो इसने फिर एक सेर आटा लिया, फिर दाल और सब्जी और जो भी कुछ बना पाया थोड़ा बहुत उसने बना लिया। बनाने के पश्चात फिर उसे याद आया, गुरुजी ने कहा था रघुनाथ जी को भोग चढ़ाना है, राम को भोग चढ़ाना है। तो अभी से पता नहीं कि कैसे भोग चढ़ाया जाता है। तो इसने जो भी वो रोटी रखी थी, सब्जी दाल रखी थी, उसने ऐसे रख दिया और फिर वो गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे गाने लगाओ, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है। अब कोई आए ना, अब इसे भूख लगी है, ठंडा हो रहा है, कोई आ नहीं रहा है। गुरुजी ने तो बोला था वो आके खाएंगे। गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, और फिर भगवान आए नहीं, भगवान भी सुन रहे, भगवान भी प्रसन्न है वैकुंठ से। फिर इसने जो एक बात कही जिससे इसने रघुनाथ जी को रिझा लिया, तो इसने सोचा, मैं जानता हूं ये क्यों नहीं आ रहे, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाकी दिन इनको इतने अच्छे अच्छे पकवान ये बाकी जो आश्रम के रहने वाले हैं वो खिलाते हैं इनको, तो इसने अच्छे अच्छे पकवान जो मिलते हैं, तो यहां पर तो रूखी रोटी मुझे ज्यादा बनानी आती नहीं है, नदी का पानी मैं ले आया हूं और वो रूखी रोटी ये सब मैं अर्पित कर रहा हूं, इसलिए शायद ये उसे खाने के लिए कतरा रहे हैं आने से। तो फिर वो बोलने लगे कि देखो, यदि तुम इस ताक में हो कि तुम्हें वहां पर उस मंदिर में कुछ मिलने वाला है, आज एकादशी है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने कहा, भूल करोगे यदि त्यजोगे ये भोजन रूखा सूखा, भूल करोगे यदि त्यजोगे भोजन रूखा सूखा, गा गा कर वो बोल रहा था, भूल करोगे यदि त्यजोगे ये भोजन रूखा सूखा, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखा, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, ये भोजन का भोग लगाइए। जब ये पद उन्होंने गाया, इस खवैये ने गाया, तो रामचंद्र जी आ गए। और रामचंद्र जी जब आ गए तो वो तो सीता के साथ आते हैं, तो सीता के साथ आए, तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना सीताराम, तो सीता के साथ आए। अब यहां पर ये खवैया देखे राम के रूप को, इतने अति सुंदर रूप को देखकर इतना वो मोहित हो गया, लेकिन उसके साथ साथ चिंतित भी। वो कहे, गुरुजी ने कहा था राम रघुनाथ आए हैं, वो आएंगे, ये साथ में ये किसी को लेकर आ गए। तो फिर वो राम रघुनाथ की ओर देखे, सीता मैया की ओर देखे, रोटी की ओर देखे कि अब मैंने तो दो लोगों के लिए बनाई थी, उनके लिए और मेरे लिए, अब ये तीसरे को भी देना होगा। तो पूछे कि ये कौन है? अरे ये मेरी धर्मपत्नी है। बोले लेकिन गुरुजी ने तो बताया नहीं इनके बारे में, गुरुजी ने तो बोला था कि केवल राम उनको तुम भोग चढ़ाना। तो भगवान बोले कि भाई हम दोनों जहां भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। तो इसने कहा अब ठीक है, आप तो एकादशी मुझे करवा के ही रहोगे आज, तो ठीक है बांट लेते हैं अब जितना मिलेगा उसमें से। तो फिर खिला दिया भगवान, सोचो सीताराम बैठकर और तीनों बैठकर खा रहे हैं। और फिर जाने से पहले खवैया ने कहा अच्छा ठीक है, अब अगली एकादशी में भी यही होने वाला है, क्योंकि गुरुजी वहां पर तो कुछ बनवाते नहीं है, अगली एकादशी में भी मुझे ही कहेंगे बनाने के लिए, अगली एकादशी में आप ऐसा करना ठीक है, आप दो लोग आते हो, आप पहले से बता देना कौन से समय आओगे, मैं कब से गा रहा हूं, आए नहीं आए नहीं, ठंडा हो रहा था, तो बता देना कौन से समय आते हूं, तो मैं गर्म गर्म वो बना के रखूं, अगली एकादशी में टाइम फिक्स करना अपना, और दो ही आओगे ना आप लोग। तो फिर अगली एकादशी आई, तो फिर गुरुजी से खवैया कहता है कि गुरुजी अब पिछली एकादशी में समस्या हुई थी, पिछली एकादशी में आपने तो कहा था कि वो रघुनाथ आने वाले हैं, वो अपने साथ एक और उनके पत्नी को ले आए, और दोनों का मुझे फिर बांटना पड़ा। तो गुरुजी सोचे ये ऐसे ही बोलता होगा, इसको ज्यादा खाना होगा इसलिए ज्यादा सेराटा ये सब मांग रहा होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तू डबल ले ले, तो डबल बना लेना, ज्यादा बना लेना। तो गुरुजी से सब सामग्री ज्यादा ज्यादा ले ली, और फिर दो लोगों के लिए इसने बनाया, और फिर बनाने के बाद जब सब परोस दिया, और उसके बाद में क्या गाना शुरू किया, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अब हुआ क्या, लक्ष्मण भी साथ आए। तो ये क्या है, ये क्या समस्या चल रही है, एक को बुलाओ दो आते हैं, दो को बुलाओ तीन आते हैं। अच्छा हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि जब पहली दफा उसने भोग चढ़ाया था तब वो यही गा रहा था राजा राम आइए, अब जब इसे पता चला कि ये सीता भी कोई है इनके साथ आती हैं, तो दूसरे बार ये गाने लगा सीता राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो सीताराम और लक्ष्मण आ गए, पूछे ये तीसरा कौन है अभी? तो रामचंद्र जी बोले ये मेरा सगा भाई है, शक्ल से तो नहीं लग रहा, स्वभाव भी से नहीं लग रहा है, हाँ सचमुच का भाई है, हाँ सचमुच का भाई है, ये भी हमारे साथ ही रहते। बोले ये तो बड़ी विकट परिस्थिति हो गई अब कि एक को बुलाते हैं, दो दो को बुलाते हैं, फिर तीन आते हैं। तो हमने तो भाई वो वचन दिया था गुरुजी को, रघुनाथ राम को खिलाएंगे, ये तो पूरे खानदान को खिलाने का वचन नहीं दिया था हमने। तो लक्ष्मण सोचने लगे कि ये मुझे किसके पास लाए हैं राम, कि ये कैसा अतिथि सत्कार है। फिर बांट लिया, ठीक है अब क्या एकादशी करा के रहोगे तुम लोग सब मिलकर, पता नहीं कौन से खानदान के हो तुम लोग। और उसके पश्चात फिर खिला दिया, और फिर उसकी अगली एकादशी गुरुजी से कहा, गुरुजी वहां पे तो बहुत लोग आते हैं, ये दो शेर आटा और इनसे कुछ नहीं चलेगा, वो पता नहीं किन किन को लेकर आते हैं। और फिर उन्होंने राम लक्ष्मण सीता को कह दिया कि अगली बार आप आओ मुझे बता देना कितने लोग आने वाले हो। तो गुरुजी से अब इसने कहा मुझे 8 शेर आटा चाहिए, मुझे इतनी दाल चाहिए, 8 शेर दाल चाहिए और इतनी सब्जी। तो गुरुजी को लगा इतना तो ये नहीं खाता होगा, ये जरूर कुछ इसको कहीं बेचता होगा, ये इतना तो ये नहीं खा सकता। तो गुरुजी अब आए देखने के लिए कि ये चल क्या रहा है, अभी तक तो गुरुजी आए नहीं थे, सामग्री सारी दे दी। अब इस बार इसने क्या किया, इसने सारी सामग्री ली ऐसे के ऐसे रख दी, कुछ नहीं बनाया, कुछ बनाया नहीं। और क्यों नहीं बनाया, आ जान दो कितने आते हैं पहले वो देख लो मैं। तो इसकी आइडिया की थी पहले कितने आते हैं वो देख लो मैं। और सारी जो इंग्रेडिएंट्स था वो आटा, फिर दाल और सब्जी और चावल और ये सब ऐसे के ऐसे रख दिया, कोई कुछ पकाया नहीं, ऐसे रख दिया और फिर गाना शुरू किया। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग बनाइए। तो अब वो राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सबको लेकर आते हैं रामचंद्र जी, वो भी मजे ले रहे थे। ये देखे ये क्या चल रहा है भाई, तुम्हारे खानदान का कोई अंत ही नहीं है। और वो बोल रहे हैं ये अब ये लोग कौन है, बोला ये मेरे और भाई हैं दो। वो तो ठीक है, अब तक तो इंसानों को ला रहे थे, अब वानर को भी एक ले आए, अब ये क्या छोड़ेगा हमारे लिए। तो राम ने कहा तो भोग कहां है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, वो सारी सामग्री पड़ी है, खुद बनाओ खुद खाओ, मैं कुछ नहीं खा, मुझे तो वैसे ही कुछ मिलने नहीं वाला है, इतने लोग आ गए हो तो खुद बनाओ खुद खाओ। तो अब इस खवैये के सामने पूरा राम दरबार किचन में भोग बनाने गया, और भरत वो भंडारा देख रहे हैं, लक्ष्मण लकड़ी तोड़कर ला रहे हैं, और शत्रुघ्न वो सब्जी इत्यादि काट रहे हैं, और असली जो भोजन चूल्हे के ऊपर कौन, माता सीता बना रही है। और ये दृश्य जब देवताओं ने देखा तो सारे देवता आ गए कि माता सीता के हाथ का पका हुआ खाने मिलेगा, ये देख रहा है ये कौन है भाई, ये लोग 33 करोड़ आ गए, ये वो तो उसने तो आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए। तो भगवान पूछ रहे हैं जी तू आंखें और ये कान क्यों बंद कर लिया, अरे भाई जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो देख देख के और क्यों मैं जलूं। और गुरुजी वहां से देख रहे हैं कि ये किससे बातें कर रहा है, गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दे रहे। तो गुरुजी आके पूछते हैं तू बातें किससे कर रहा है, अरे किससे बातें कर रहे हैं, आपने ये रघुनाथ रघुनाथ के विषय में बोल रखा है, ये पता नहीं किस किस को लेकर आते हैं, ये देखो अभी कितने आ गए। गुरुजी देख रहे हैं कहां, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो ये खवैया रामचंद्र जी की तरफ देख के बोलता है अब ये क्या आपकी माया है, एक तो आप आए इतने लोगों को लेकर, गुरुजी के पे शिकायत लगाई, गुरुजी को भी आप दिखाई नहीं दे रहे हो, क्यों ये गुरुजी क्यों नहीं देख पा रहे आपको। तब रामचंद्र जी ने इसे कहा कि तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख पा रहे क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी तरह सरलता नहीं है। तो ये इतना सरल था, ये बात गुरुजी को बोल दिया, ये बात गुरुजी को बोल दी कि गुरुजी वो रघुनाथ जी बोल रहे हैं कि आप मेरे तरह सरल नहीं है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो, सब बैठे हुए हैं यहां पर, अरे भोजन पका रहे हैं, पक भी गया इतना। तो गुरुजी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे और गुरुजी ने इस खवैया के चरण छुए और जैसे ही चरण छुए रघुनाथ जी का दर्शन गुरुजी को भी हुआ और रघुनाथ जी ने कहा कि इतने वर्षों तक जो साधना तपस्या अध्ययन वगैरह तुमने जो किया वो परिपूर्ण नहीं था आज तक, क्योंकि आज तुम सरलता के इस गुण को हासिल किए हो। और जब गुरुजी ने पूरे राम दरबार को देखा, 33 करोड़ देवताओं को देखा और फिर गुरुजी और ये गुरुजी का शिष्य दोनों मिलकर गाने लगे, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, बोलो राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो रामचंद्र जी इस घटना के द्वारा हम सबको क्या सिखा रहे हैं कि सरलता, हमारे हृदय में जब सरलता होगी, वो जो हमने कल हमारे भोले राम की कथा सुनाई थी जज बाबा की, याद है, मैं क्या जानूं रघुनाथ जाने, उस भोले राम की वो केवट की सरलता और यहां पर इस खवैये की सरलता। तो इस सरलता के वजह से भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अपनी कृपा देते हैं सीता मैया के साथ। इसलिए इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में केवल प्रभु श्री राम का नाम है, वही एकमेव आधार है। और हां, हम भगवान का नाम गिरते लुढ़कते हुए ले रहे हैं, परंतु ये समझ लो कि चाहे गिरते लुढ़कते हुए डुलकी मारते हुए कैसे भी हम नाम लें भगवान का, परंतु यदि भाव प्रामाणिक है तो भगवान उस नाम के रूप में अवतरित होके हमें कृपा देंगे। इसलिए हम भगवान को नाम के रूप में अपने साथ, उनकी पादुका, उनका पूरा विग्रह, जो हमने कहा राम का धाम, राम की लीलाएं, राम के गुण, राम का धाम, और ये पूरा रामायण उनके नाम में है। एक बार एक गांव में, वहां कई चोर रहते थे और ये चोर वो प्रतीक्षा में रहते थे कि कब गांव में शादी होगी किसी की, क्योंकि शादी के समारोह में पूरा गांव जाता था अपना घर छोड़कर और सारे परिवार वाले जाते थे तो घर खाली होते थे। तो तब जब किसी की भी शादी है तो खाली घर में जाकर ये लोग चोरी किया करते थे। तो एक बार ऐसे ही गांव में शादी थी तो एक व्यक्ति, उसे डर था कि मैं तो अकेला रहता हूं और मैं शादी के लिए चला जाऊं तो पीछे से ये चोर आएंगे और ये चोरी कर देंगे, तो वो गया नहीं शादी को। परंतु फिर भी उसे डर था कि मैं अकेला हूं और ये कई चोर हैं, एक साथ आकर मेरे पर आक्रमण कर देंगे तो मैं कैसे अकेला बचा पाऊंगा। तो ये चोर, ये भी बहुत चतुर थे, ये क्या करते थे कि किसी भी घर में जाकर पहले चेक करते थे कि घर में कितने लोग हैं, अगर काफी लोग हैं घर के अंदर तो ये फिर उस पर धावा नहीं बोलते थे, तो ये क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे। तो पत्थर फेंकते थे और पत्थर फेंकने के बाद यदि किसी की आवाज आई तो इन्हें पता चल जाता था कि वो अकेला है कि और उसके साथ कोई है। तो इस घर में जहां पर ये अकेला बंदा रात को सोया हुआ था डर के मारे चोरों के, तो इन्होंने पत्थर फेंका, पत्थर की आवाज हुई, आंगन में पत्थर गिरा, ये समझ गया चोर ने किया है, ये चोर आ गए हैं। तो अब इसने युक्ति निकाली, ये भी चतुर था, तो ये उठने का नाटक कर रहा है और चिल्लाते हुए बोल रहा है, अरे महेंद्र सिंह देखो कौन आया है, घर पे कोई नहीं है, ये अकेला है, अरे महेंद्र सिंह, अरे सुरेंद्र सिंह, अरे फतेह सिंह, अरे वो शमशेर सिंह को उठाओ, चारों सब लोग उठो, देखो कोई आया। चोर सुने, बाप रे महेंद्र सिंह यहां पे रह रहा है, ये फतेह सिंह रह रहा है, ये सुरेंद्र सिंह रह रहा है, और ये शमशेर सिंह भी रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं, दुम दबा के वो सारे चोर भाग। यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि झूठे नाम लिए उसने परंतु असली चोर भगा दिए। तो यदि कोई झूठे नाम लेकर असली चोर को भगा सकता है, तो यदि हम सच्चे दिल से भगवान राम का नाम लें तो ये जो हमारे अंदर के सच्चे चोर हैं ये क्यों नहीं भागेंगे। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 रे। तो हमारा बचपन हमने बिता दिया, जवानी बिता दी, बुढ़ापा भी आ गया होगा अलग अलग प्रकार से, अब भी कुछ ज्यादा समय नहीं बीता है यदि राम का नाम उसका हम सहारा लें। और जैसे हमने बताया था कि शिवजी ने पूरे उस 1 करोड़ रामायण के ग्रंथ में से ये 2 अक्षर अपने लिए रख लिए थे, राम। तो उसी प्रकार से हम भगवान का नाम हर समय अपने साथ रखें। इसलिए मणिकर्णिका घाट आप लोग जाकर आए, मणिकर्णिका घाट कोई काशी में, तो वहां पर जब शव को जलाया जाता है, मुर्दों को जलाया जाता है, क्यों वहां पर ये मान्यता है कि वहां पर जो शव जलाए जाते हैं मणिकर्णिका घाट में उनका उद्धार होता है, क्योंकि जो भी शव वहां पर जलाए जाते हैं उस शव को वरदान है कि शिवजी उसके कान में आके राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो हम सारे देवताओं से, शिवजी और भगवान के पार्षदों से यही प्रार्थना करें, विशेष रूप से चित्रकूट धाम में हम प्रार्थना करें भरत जी से कि जो उन्होंने जगह बनाई प्रभु श्री राम के हृदय में, उनके जीवन में, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी भगवान श्री राम की कृपा, सीताराम की कृपा, उनके चरण पादुका अपने साथ हर समय हम रखें, उन्हें हमें हमारे हृदय कि उनके राज सिंहासन पर विराजित करें और उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहें, और यही हमारे चित्रकूट, अयोध्या, अलाहाबाद, प्रयाग, त्रिवेणी संगम इसके यात्रा की एक सर्वोच्च सिद्धि होगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अयोध्या चित्रकूट यात्रा की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।